महाराज जी ने कर्तापन के बारे में एक वाक्य लिखा है संतविलास में ही। उन्होंने कहा कि कर्तापन ऐसे ही प्रकट होता है जैसे कि समुद्र में सहज स्वभाव ही तरंग पैदा होती है। और ये बात वो क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं, यद्यपि कहने में ये बात आती है कि समुद्र में तरंग पैदा होती है, लेकिन आप विचार करके देखो, क्या वास्तव में समुद्र में कोई चीज पैदा हुई है? यदि समुद्र भूल जाओ, तरंगी की बात करो, तो पूरा एक साइंटिस्टों ने एक ग्रंथ तैयार कर दिया है लहर की साइंस के ऊपर। और लहर की उपयोगिता भी जानते हैं, उस लहर से बिजली तक बनाई जा सकती है, बड़े यूजर्स हैं उसके। तो जिस प्रकार समुद्र के अंदर तरंग पैदा हुई है, तरंग के पैदा होने के पश्चात भी विचार से देखा जाए तो समुद्र में कुछ भी पैदा नहीं है। समुद्र जैसा पहले था अभी भी वो वैसा ही है। इसलिए महाजी ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे स्वाभाविक ही समुद्र में तरंग पैदा होती है, उसी प्रकार उस सत्ता से, ईश्वरीय सत्ता कहते हैं, कर्तापन रूपी तरंग सहज स्वभाव ही उदय होती है। परंतु यदि विचार किया जाए तो ये कर्तापन गायब हो जाता है। वो कहते हैं जिसका अस्तित्व तो है ही नहीं, वो चीज टिक भी नहीं सकती, इसलिए कर्तापन टिकता नहीं है। जब आप सत्पुरुषों के वचन के अनुसार या शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार जो विचार करते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो कर्तापन बंधन है ये आपका समझ। लेकिन इसको यदि प्रैक्टिकली समझा जाए, अल्टीमेटली कर्तापन जिस इंसान का भी, जिस जीव का भी खत्म होता होगा, उसके कुछ अंदर एक्सपीरियंस भी तो होते होंगे। तो ये विज्ञान बड़ा गहन है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए ये विज्ञान समझना तो पड़ेगा। बिना इस विज्ञान के समझे हुए पूरी बात समझ में आती नहीं। और ये विज्ञान थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल, ये अनुभवी विज्ञान है। महाराज जी कहते हैं ये जीव स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के बंधन में। स्थूल प्रकृति क्या है? जो हमारे इंद्रियों के अनुभव में आ रही है, जैसे कि ये देह, ये मेरे अनुभव में है, और ये संसार, ये मेरे अनुभव में। तो ये जो देह और ये जो संसार है, ये स्थूल प्रकृति है, जिसका हम खुली आंख से अनुभव कर सकते। दूसरी बात, वो सूक्ष्म प्रकृति भी कहते हैं जीव इंद्रियों के बंधन में। तो सूक्ष्म प्रकृति क्या है? जो आपकी इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा संसार अंदर करते हैं उनको सूक्ष्म कहा जाता है। शरीर की तुलना में ये सूक्ष्म, इसको गीता में कहा गया इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को परे अर्थात शरीर के मुकाबले में श्रेष्ठ और सूक्ष्म कहा जाता है। और सारा अनुभव जो संसार का करते हैं इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं। इंद्रियों का अनुभव यदि हमसे छीन लिया जाए तो संसार का कोई मतलब ही नहीं बचता, इस देह का संसार का क्या करेगा, मतलब ही नहीं। इसके पश्चात वो कहते हैं मन है, मन में आपके संकल्प होते हैं, थिंकिंग चलती है, डिजायर्स उठती हैं, तो ये मन इंद्रियों से भी सूक्ष्म, यदि सूक्ष्मता की बात की जाए तो ये इससे भी सूक्ष्म। जिसके लिए गीता में कहा गया इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से श्रेष्ठ और सूक्ष्म मन। तो मुझको पता है कि मन के अंदर जो वासना पल रही है, मन के अंदर जो मेरी डिजायर पल रही है, उस डिजायर की पूर्ति के लिए ही मैं इस देह का और संसार का उपयोग कर रहा हूं। प्रैक्टिकली मैं जानता हूं तो इसका मतलब हुआ कि मन के अंदर जो डिजायर उठ रही है वो जीव को बेचैन करती है। जब जीव बेचैन होता है तो इस बेचैनी से मुक्त होने के लिए वो मन के अंदर जो डिजायर उठी है उसको पूर्ण करने के लिए इन इंद्रियों का और देह का और संसार का उपयोग करता है। जब वो डिजायर पूर्ण होती है तो जीव को संतोष मिलता है, और पूर्ण नहीं होती है तो जीव को असंतोष मिलता है। तो विचार करने की बात यह है कि जीव को संतोष असंतोष किस कारण से मिल रहा है। यदि साधारण शब्दों में कहता हूं मैं तो मैं ये कहता हूं ना कि मैं संतुष्ट हूं मैं असंतुष्ट हूं, लेकिन अपने बारे में ज्ञान ना होने के कारण, शास्त्रों का ठीक ठीक विवेचन ना करने के कारण, या जैसा संता विलास मार्गदर्शन कर रही है सिखाना चाह रही है वो ना सीखने के कारण हम मोटी मोटी सांसारिक बातें सीख लेते हैं और धर्म की परिभाषा भी उसी आधार पर कर देते हैं और अपने बारे में भी सब घालमेल कर देते हैं। तो संता विलास कहे कुछ रही है, शास्त्र कहे कुछ रहे हैं, समझ हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए सारी जिंदगी सिमरन करते हुए सत्संग सुनते हुए समझ में बात आती है। ऐसा लगता है कि प्रगति तो नजर आती है क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो आदमी अपना शोधन करता ही करता है, लेकिन वो प्रगति नजर नहीं आती कि मानसिक क्लेश के लिए मैं मानसिक क्लेश से मैं मुक्त हो जाऊं, वो मेरा बना रहता है। तो मैं जीव हूं, सारी समता विलास जीव के लिए लिखी गई, तो जीव ने समझना है कि मेरा बंधन क्या है। तो जीव का बंधन उसके संग ही है, संसार में बंधन नहीं है जीव के लिए, जीव का बंधन उसके मन के अंतर्गत ही है। इसलिए महाराज जी ने इस बंधन को समझाने के लिए वासना विवेक पूरा का पूरा चैप्टर लिखा चार खंडों में, सबसे बड़ा चैप्टर वो संता विलास का है वासना विवेक। और ये वासना कहां से आ रही है, वाणी इसको बयान कर रही है, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुख सार। ये वासना कहां से पैदा हो रही है, कर्तापन से पैदा हो रही है। इसीलिए शास्त्र में इस कर्तापन को मूल माया कहा जाता है, मूल प्रकृति कहा जाता है। अर्थात जहां कर्तापन केवल है वहां की सारी सृष्टि द्वैत रूप में नहीं होती, वो अद्वैत रूप में होती, उसको मूल प्रकृति कहा जाता है। जहां नाम रूप की जो प्रकृति है, पांच तत्वों की प्रकृति है, अभी पैदा नहीं हुई है, लेकिन वो बीज रूप में उसकी सत्ता, प्रकृति सत्ता वहां मौजूद है बीज रूप में। तो वो जो बीज रूप है प्रकृति का, वो है मूल, उसको कर्ता बन जाता है। तो ये जो मन का बंधन है, इसके आगे महाराज जी बयान करते हैं बुद्धि का। वो बुद्धि कहते हैं निश्चय शक्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेटिंग फैकल्टी, जो डिटर्मिनेट करती है, निश्चय करती है। जैसे कि मान लिया कोई नई वस्तु अचानक आपके सामने प्रकट हो जाए, जो आपने कभी भी पहले ना देखी हो, जिसके बारे में कभी भी कोई विचार ना किया, अचानक कोई चीज सामने प्रकट हो जाए, तो नजर पड़ते ही आपके अंदर एक स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, ये क्या है? आप थिंकिंग नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, मन आपका एक्टिव नहीं है इसके लिए, लेकिन जो बुद्धि है, डिटरमिनेटिंग फैकल्टी है, निश्चय शक्ति है, वो क्वेश्चन खड़ा कर रही है ना, कोई चीज है ना वो, तो इसको बुद्धि का हमारे लिए। तो ये, और इसके ऊपर कहते हैं वो अहम भाव, मैं भाव, व्यक्तित्व। तो मैं अपने आप को अलग करके देखता हूँ, भले ही जीव हूं लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से अलग करके देखता हूँ, अन्य जीवों से अलग करके देखता हूँ, मेरा मेरी इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ, तो इसको कहते हैं मैं भाव, या इसको अहम भाव भी देखते। तो ये जो है इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये मैं भाव, ये सूक्ष्म, वो स्थूल देह और संसार स्थूल है, ये सूक्ष्म। और इससे भी ऊपर जो शास्त्र में वर्णन आता है सूक्ष्म चीज का, इनसे भी सूक्ष्म क्या है, वो कहते हैं वो प्राण। और प्राण से ऊपर एक और चीज है जिसको अव्यक्त, जहां जो कुछ भी आप ये सुना रहे, ये सब चीज जिसमें मर्ज हो जाती है, इसका नाम है अव्यक्त, उसी को मूल प्रकृति देते। इसीलिए जो साधना है, जो सिमरन से प्रारंभ होती है, वो साधना आपको ऐसे ही ऊपर ले जाती है। तो सबसे पहले साधना की प्रोसेस क्या होती है, मोटी बातें छोड़ देना, कि अंदर की एक स्थिति पैदा होती है, चाहे वो नाद के रूप में हो, चाहे वो कुंडलिनी के रूप में हो, एक एडवांस स्थिति में पहुंचकर ये इंद्रियां जो है वो मन के अंदर लीन होती है। अर्थात उसमें शरीर का और संसार का बोध नहीं है। इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मतलब की बातें कोई नहीं है। फिर और एडवांस स्थिति होती है, वो साधना की स्थिति है, कि मन प्राण में लीन हो जाता है, तो उस समय साधक की या भक्त की ये स्थिति होती है कि वहां एक संकल्प भी नहीं होती, वो संकल्प रहित अवस्था है, वहां केवल अनुभव है बस। तो उस स्थिति को वो प्राण कहेंगे। कि उस भक्त को प्राण का बोध है ना, वहां वो जाप कर रहा है ना वहां कुछ वो सोच रहा है, तो वो जो प्राण, सपोज हम साधारण रूप में बात करें, श्वास का अंदर जाना और बाहर आना, उसको प्राण कहते हैं। तो वो जो योगी है उस प्राण का अनुभव कर रहा है, लेकिन किस प्राण का, जहां ये सब चीज लीन हो चुकी है। हम जब सिमरन कर रहे हैं, प्राण का ध्यान कर रहे हैं, हमारी सांस आ रही है जा रही है, ये बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। तो कंप्लीट शांत अवस्था है वो, जहां विचार ही नहीं है, उठ ही नहीं सकता, जहां पर जहां मन ही नहीं रहा, तो विचार करो अशांति कहां से होगी, अशांति सारे मन के अंतर्गत है। तो वो जो प्राण की गति है वो योगी जानता है, वो उस शांति का धीरे धीरे और सूक्ष्म होती चली जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि प्राण का उसको एक तरह से बोध ही नहीं रहता। तो वो प्राण जिसमें लीन होता है उसको कहते हैं, गीता में कहा गया अव्यक्त, इसको इंग्लिश में कहेंगे अनमैनिफेस्ट। जहां प्रकृति का मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, नाम रूप उत्पन्न नहीं हुआ, पांच तत्व उत्पन्न नहीं हुए, तो वो है मूल स्थिति। तो उस प्राण की स्थिरता में वो स्थिति पैदा होती है। तो वो स्थिति में जब ये योगी या ये भक्त पहुंचता है, तब ये निर्णय होते हैं जो संतो विलासम बुद्धि महाजी जो कोई ज्ञान कर रहे हैं, वहां से जब ये जीव नॉर्मल आता है, उसको सारा सिस्टम पता होता है, ये कैसे प्रकृति हो रहे हैं, ये इसका मूल स्रोत है कहां। तो वो जो स्थिति है जिसको अव्यक्त कह रहे हैं, अनमैनिफेस्ट कह रहे हैं, ये कंप्लीट इनोसेंसिस है। और वो योगी उस समय ऑल पावरफुल है, प्रकृति की सारी शक्तियां उसके अंदर, उस हालत से जागरण यदि कोई संकल्प आ जाए उसके अंदर, तो वो संकल्प देन एंड देयर पूरा हो जाएगा, प्रकृति में वही रचना वही घटना घट जाएगी जो संकल्प आया, क्योंकि प्रकृति के स्रोत पे बैठ जा रही है। लेकिन ये पूर्ण हालत नहीं है, वो स्थिति उसकी टूटती है। तो ये स्थिति जो है जिसको मूल प्रकृति कह रहे हैं, जिसको जयदेव शंकराचार्य ने मूल माया कहा। मूल माया क्यों कहा, माया होती है नाम रूपात्मक, माया होती है द्वंद्व रूप, लेकिन वो मूल माया क्यों कहा, जहां नाम रूप नहीं है, द्वंद्व नहीं है, फिर भी माया है। तो ये जो प्रकृति का अव्यक्त रूप है, ये मूल माया है, ये तब तक बनी रहती है जब तक कर्तापन जीव के अंदर होता है। इसीलिए इसके आगे भी साधना उसको करनी पड़ती है। विचार करो जरा, जहां संसार ही नहीं रहा, देह ही नहीं रही, फिर भी साधना बाकी, फिर भी समर्पण बाकी। अब बताइए, असली धर्म की प्राप्ति तो इससे ऊपर है। असली धर्म की प्राप्ति जिसको महाजी कह रहे हैं, समता को ही धर्म कहते हैं। अब महाजी की बात समझ में आएगी, महाजी क्या बात कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं नारायण, समता को ही धर्म कहते हैं। इसके ऊपर की जो स्थिति है उसको समता कहते हैं, प्रकृति से ऊपर की स्थिति उसको पुरुष कहते हैं। तो इसीलिए बस एक ही रास्ता है, समर्पण समर्पण समर्पण। और जिसके अंदर इतना अहंकार है कि छोटे छोटे अच्छे काम कर लेता है संसार में आकर, कितना अहंकार है, मैं बड़ा सेवादार हूं, मैं बड़ा सिमरन करने वाला हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं, तो अभी तो मन को ही मोटा कर रहा है, करता बंदा खत्म होने वाला है, कहां से खत्म हो जाए। अब बताइए मुझे, यदि आप शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझते, संतरासन लिखोगे, बातें नहीं लिखी, मोटी मोटी सादगी सेवा की बातें कहते हो, हमारी मतलब की तो यही बातें हैं, ठीक है, अडॉप्ट करने के लिए, धारण करने के लिए ये बातें आपके मतलब की हो सकती है, लेकिन आपने आगे भी तो जाना है, समझ तो होनी चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी बातें धारण करने में जो गलतियां करोगे आप भयंकर। जिस समाज से प्रेम करना चाहिए तो उसी से नफरत करना शुरू कर दोगे, कहोगे ये तो धर्म मार्ग पे चलना नहीं है, चलता नहीं है, ये तो बड़ा खोटा आदमी है, आप आदमियों से नफरत करना शुरू कर दोगे क्योंकि आप धर्म मार्ग पे चल रहे। तो इसीलिए यदि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो नीचे की बातों में भी गलतियां करते रहोगे, आपका विकास होगा तो बड़ा ही स्लो होगा, जैसे किसी पशु को सिखाया जाए, एक कुत्ते को भी सिखाया जा सकता है, एक क्रिया को यदि हजार बार करवाओ सीख जाएगा, तो मेरा डेवलपमेंट ऐसे ही होगा। तो इसीलिए ये जो शास्त्र लिखे गए हैं ये निरंतर स्वाध्याय की चीज है, निरंतर मनन की चीज, और जहां मैं खड़ा हूं मैंने वहां से छाटना है कि मैं आज क्या कर सकता हूं, क्या मेरी कैपेसिटी, क्या गुरु का मेरे लिए आदेश है, मैंने साइलेंटली उस आदेश को समझने की कोशिश करनी और मैंने उसको पालन करने की कोशिश करी, अहंकार नहीं पालना है, क्योंकि मेरा जो असली बंधन है वो बड़ा बारीक है, वो तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरी बुद्धि उसको समझने लायक तक नहीं बनी, करेगी कब, तो बहुत दूर की बात। तो अब बताइए वो स्थिति जिसको हम अव्यक्त कह रहे हैं, जहां ना संसार है ना देह है ना मन है ना जहां प्राण है, इसलिए उस अव्यक्त की हालत को या जो चीज वहां मौजूद है वास्तव में उसको कुंडलनी कहते हैं, वो है। यहां आके पता लगेगा कि रामकृष्ण परमहंस काली किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं काली, दुनिया वाले समझ पाएंगे कभी रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मंदिर में जो मूर्ति खड़ी है उसको काली कह रहे हैं, काली क्यों है, जहां नाम रूप प्रकृति है ही नहीं तो काली के अलावा कहोगे क्या, कहोगे जो नाम रूप को चट कर गई, सारे सारे ब्रह्मांड के नाम रूप खत्म कर दिए, सूर्य खत्म कर दिए, तारे खत्म कर दिए, चंद्रमा खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, और जहां से ये उदय हुए हैं, सूर्य चंद्रमा तारे ब्रह्मांड पृथ्वी मेरी देह मेरी इंद्रियां सब कुछ जिसमें से उत्पन्न हुई है उसका नाम है काली। और ये जीव इसके बंधन में कब तक रहता है, जब तक उसके अंदर कर्तापन मौजूद है। इसलिए गुरु जानता है कि जो ये मैं भाव है ये मूल अहंकार है, ये तो पांच विकार वाला अहंकार है, काम क्रोध मोह अहंकार, ये तो बड़ा मोटा अहंकार है, लेकिन असली अहंकार कहते हैं जीव भाव को, मैं जीव हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा अलग अस्तित्व है, ये अस्तित्व बना रहना चाहिए, मुझको मोक्ष मिल जाए तो सब बंधन में रहना चाहिए, मैं मुक्त हो जाना चाहिए, ये जो मैं सोचता रहता हूं इसको कह रहे हैं वो, वास्तव में ये है कर्तापन मूल, ये है मूल अहंकार। तो इससे आगे जाना है, अब विचार करो, वो है मोक्ष की स्थिति, ना वहां ईश्वर है ना वहां जीव है, जो कुछ भी है उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है सत्ता, उसका नाम है चेतन शक्ति, ये उसके नाम, उसका नाम है समता। तो गुरु वहां स्थित है, गुरु वहां है, वो जो मूल सत्ता है वो गुरु है। नाम और रूप मंगत और मंगत का शरीर ही गुरु नहीं है। अब आपको महाराज जी की परिभाषा समझ में आएगी, संताला संचालक हैं गुरु के बारे में, गुरु का सिद्धांत है। वो कह रहे हैं कि गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है, और ये शब्द उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो साधना करके नाद प्रकट होता है, उस शब्द की बात नहीं कर रहे महाराज जी, ये उस शब्द की बात कर रहे हैं जो अव्यक्त के ऊपर ब्रह्म शब्द की बात कर रहे हैं। तो इसलिए तो किसी के ने नाद प्रकट हो जाए वो संसार में तो गुरु बनने लायक हो गया। अरे मूर्ख, तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया ना, तो ये भी गया तेरा, ये पता ही नहीं। इसीलिए संगते भी गुरु को नहीं समझ पाती, क्योंकि वैसी बुद्धि नहीं होती, वो स्वाध्याय नहीं होता, वो शास्त्र समझ नहीं आती नहीं होती, बस अपने मर्जी से अपनी योश जैसी बुद्धि है वैसी गुरु के बारे में व्याख्यान करते रहे। नहीं तो महाराज जी ये बात क्यों कर रहे, थोड़ा तो सोच के देखें महाराज जी क्यों बात कहते हैं सदगुरु तो अंतर्जम है। पल पल करे पुकार तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उधार। पल पल पुकार का मतलब मालूम क्या है, कि हर वक्त वो आपको अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि मैं कर्तापन अपना स्ट्रांग करके बाहर को भाग रहा हूं। तेरी जितनी भी धर्म क्रिया है ये सब तेरा बाहर की क्रिया है, ये बाहर भगा रही है। यदि तेरा धर्म संसार में है तो ये तुझको तेरा कर्तापन उसको बाहर ले जाए, ये धर्म तेरा कल्याण है। तो विचार करो जरा, ईश्वर जहां है वहीं तो मिलेगा। अब बताओ तेरी इंद्रियां अंदर हैं, मन अंदर है, बुद्धि अंदर है, कर्तापन अंदर है, और गुरु कह रहा है सतगुरु तो अंदर है, वो भी अंदर है। गुरु है कौन, वो शब्द रूप परमेश्वर। उस शब्द को वर्ड कहा जाता है, गीता में कहा है, जैसे बाइबल में इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, प्रारंभ में केवल शब्द था, वर्ड वाज विद गॉड, ईश्वर के संग शब्द था, वर्ड वाज गॉड, शब्द ही ईश्वर था। तो बताइए फाइनल चीज शब्द है ना, और गुरु भी लिख के दे रहा संतदास में, वास समय गुरु शब्द रूप परमेश्वर, शब्द रूप परमेश्वर। तो वो जो शब्द है वो उस अव्यक्त से ऊपर है, उस अव्यक्त का भी स्रोत है वो। तो इसलिए कहता है प्रकृति ये मूल माया है। तो मैंने कहां जाना है और आज मैं किन बातों का अहंकार कर रहा हूं, बड़े बड़े अच्छे कर्म भी कर लो आप, क्या कोई महत्व है उनका? इस ईश्वर के समाज में सब वही महत्व है। अब आपको महाजी की बात समझ में आएगी, महाजी कह रहे हैं जब तक एक इच्छा भी बाकी है ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह उनके अनुभव की बात है। और तेरे अंदर जब तक कर्तापन है कर्म करने की इच्छा पैदा होगी, अच्छे कर्म करोगे ज्यादा से, लेकिन इच्छा तो पैदा होगी। तो अच्छे कर्म करने की इच्छा जब पैदा होती है क्योंकि ये होश आ जाना चाहिए, ये मेरा बंधन है। अच्छा कर्म करने के लिए मार्गदर्शन तो गुरु कह रहा है, क्योंकि तू स्वार्थ कर्म कर रहा है, तू स्वार्थ कर्म में फंसेगा। तो स्वार्थ कर्म के से मुक्त होने के लिए या स्वार्थ भावना से मुक्त होने के लिए तुम्हें निष्काम सेवा का मार्ग अपनाना है, ये तेरी दवा है, तेरा इलाज है। लेकिन इलाज करके क्या मिलेगा आपको, स्वस्थ शरीर मिलेगा ना। तो मन जो स्वार्थ में फंसा हुआ था, मन तेरा स्वस्थ हो जाएगा, त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगा, निष्काम सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन निष्काम कर्म करवाना गुरु का तो उद्देश्य नहीं है, उससे तुझको इस अव्यक्त से ऊपर ले जाना गुरु का उद्देश्य। प्रकृति से मुक्त करना गुरु का उद्देश्य, उसके लिए गुरु आया। तो विचार करो ये कर्तापन कितनी गहरी थी, कितनी गहरी थी। यदि आपके अंदर वो पढ़ने की तीव्र लगन नहीं है, ठीक है, शुरू से मोटी मोटी बातें समझ में आती हैं, लेकिन आपके अंदर यदि शास्त्रों का महत्व बना रहता है दिमाग में, उनका पाठ नहीं करते, उनकी गहराई को समझने की कोशिश करते और समझ में आ भी जाए तो उसका अहंकार नहीं करते, क्योंकि आगे आपने बहुत कुछ समझना और ये आगे की बात समझ में आएगी भी नहीं यदि आप गुरु के बताए हुए प्रोग्राम पर साइलेंटली नहीं चल रहे। साइलेंटली मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि ये मैं सत्संगी हूं, मैं साधक हूं, ये दिखाने वाली चीज नहीं। इसलिए माजी ने हिदायत दी है कि प्रेमी वर्षों तो अभ्यास करता रहे, किसी को पता भी ना लगे तो अभ्यास भी करता, क्योंकि दिखाने के अगर मेरा भाव आया ना तो ये देह का अहंकार आया। देह को तो दिखाया तो क्या दिखाया था? इसका मतलब तू जीव भाव से भी नीचे आ जाएगा। ये भी भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, ईश्वर तो भूला ही हुआ है, तो ये भी भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, तो यहां खड़ा हो जाएगा मैं देह हूं, इसी को तो दिखाएगा क्या दिखाएगा, इसके कर्म दिखाएगा। तो तेरी बुद्धि तो साधक होते हुए भी जड़ बुद्धि जीव है, देह जड़ है ना, तो जो देह में खड़ा हुआ है तो जड़ बुद्धि जीव है। इसीलिए ये बड़ा खतरा रहता है जब हम सत्संगी बन जाते हैं, जब हम साधक बन जाते हैं, जब हम सेवादार बन जाते हैं, तो देह के अहंकारी हुआ ये जीव का पतन है। चला मैं धर्म मार्ग पर और अपना पतन कर लिया, कौन चेताएगा फिर आपको बताओ मुझे। तो यदि शास्त्र आपने बारीकी से पढ़े हैं, समझने की कोशिश की है, नहीं समझ में आ रही है तो जो भी जानकार है उसको उससे मार्गदर्शन निर्माण भाव से उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश की है, तभी वो समझाएगा आपको। आप अहंकार लेके जा रहे हो, मैं पहले ही बड़ा ज्ञानी हूं, समझदार हूं, तो वो क्यों समझाएगा फिर आपको बताओ। तो ये पूरा का पूरा मार्ग निर्माणता का मार्ग है, मिटने का मार्ग है। विचार तो करो, जीव ने अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना व्यक्तित्व ही खत्म करना है, होम करना है, क्योंकि इसने मोक्ष की प्राप्ति करनी। तो जब इस जीव का व्यक्तित्व ही खत्म होता है, तब जाकर ये जीव अपने मूल स्वरूप में स्थित होता है। वो मूल स्वरूप इसका ही है, क्योंकि अभी मैं जो अपना मूल स्वरूप समझ रहा हूं उसको मार्गी कर्तापन कह रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर ये भाव बना हुआ है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करने के लिए संसार में आया हूं, मैं करके ही छोड़ूंगा, है ना। तो इसके मूल में कर्तापन है और ये कर्तापन बिना अंदर जाए खत्म नहीं होने वाला। जहां इतनी शांति है कि आप अपने आप को भूल ही गए हो, लेकिन अनुभव बना हुआ है, आप उस प्राण का अनुभव कर रहे हो, जहां आप ये संकल्प भी नहीं कर सकते अरे मैंने शास्त्र में पढ़ा था ये है वो प्राण का अनुभव, ये विचार नहीं आ सकता वहां पर, मन ही नहीं है वहां पर, मन की सत्ता नहीं। अब बताइए उसके ऊपर फिर ये प्राण जिससे उदय हुए हैं उसी में ये लीन हो जाते हैं, उसका नाम है अव्यक्त। तो गीता में वर्ड अव्यक्त यूज किया गया, ये है अव्यक्त। आप बताइए, अभी भी ईश्वर मिला नहीं? जहां पूरा संसार खत्म हो गया, मेरा मन बुद्धि ये अहंकार देह सारी खत्म हो गई, वहां पर अभी भी ईश्वर से भेद नहीं हुई है मेरी, ईश्वर से भी ऊपर। तो महाराज जी जहां स्थित होकर बात कर रहे हैं, महाराज जी जो हैं, उन महाराजियों को समझ सकता है, उन महाराज जी को हम जिंदगी भर समझ पाएंगे क्या? तो ये विज्ञान बड़ा गहरा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं समता विलास ये मास्टरपीस शास्त्र है। मास्टरपीस भी कह रहा हूं, हर शास्त्र मास्टरपीस क्योंकि मास्टर से के द्वारा प्रकट हुआ है। लेकिन मास्टरपीस मैं इसलिए कह रहा हूं कि गीता आप 50 साल भी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा। अहंकार जरूर कर लोगे मैंने गीता समझी, लेकिन समता विलास समझने के बाद यदि गीता पढ़ोगे तब जरूर गीता समझने आएगा, क्योंकि वो केवल सूत्र रूप में एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। अर्जुन कहता है कृष्ण से, वासुदेव मनुष्य पाप करने पे क्यों मजबूर होगा, कौन मनुष्य से पाप करवा? वो कहते हैं उसकी इच्छा ही मनुष्य से पाप करवाती है, जिसको आप महाजी के शब्दों में कहते हैं वासना ही इसको पाप करने को मजबूर करती, बस बात खत्म हो गई। महाजी ने वासना के ऊपर चार चैप्टर लिख दिए समता विलास में, चार चैप्टर, वासना विवेक, वासना छेदन विवेक, वासना अभाव विवेक, शुद्ध आचरण विवेक। तो ये वासना ही तो सारा प्रकृति जाल है, इसका नाम वासना है। ये मेरी वासना के कारण ये देह संसार प्रकट हुआ, जिस दिन वासना भी नहीं जाएगी ये आंख खुली भी रहेगी ये गायब हो जाएगी। ये देह ये संसार सारा लोप जाएगा, आंख आपकी खुली रहे तब भी, क्योंकि सुकरात के जीवन में एक घटना घटी थी जो एथेंस के लोग नहीं समझ पाए थे। सूर्य की ओर देख रहा था, खड़ा हुआ था, देखते देखते दिन बीत गया रात बीत गई, वो खड़ा ही रहा। जो विचारक थे वहां के तो उन्होंने सोचा ये बड़ा गहन विचार कर रहा है, इसको होश ही नहीं है संसार। विचार तो ये समझेगा थिंकिंग के द्वारा समझेगा ना, ये थिंकिंग कर रहा है तो उसकी स्थिति और क्या समझेगा। वो 24 घंटे समाधि में खड़ा हुआ, वो समाधि का है। वो अव्यक्त की हालत है या अव्यक्त से ऊपर की हालत है? जहां ये स्थूल प्रकृति है, ना जहां मन है, ना जहां बुद्धि है, ना जहां इंद्रियां है, ना जहां देह है, ना जहां संसार है, सुकरात वहां उस स्थिति में। तो बताइए सुकरात की स्थिति को कोई सत्पुरुष समझ सकता है? कोई विचारक दुनिया का बड़े से बड़ा विचारक समझ पाएगा क्या उसकी स्थिति? सत्पुरुषों को हम नहीं समझ सकते कभी। तो ये स्थिति कर्तापन से ऊपर, जहां कर्तापन खत्म होता है, इसके नीचे आते ही, और ये नीचे आएगा तभी जब कर्तापन की नदी है। तो सत्पुरुष की जो स्थिति होती है वो सहज समाधि की होती है। सहज समाधि का मतलब जैसे महाराज जी बैठे होते तो प्रेमी ऐसे घेरा बनाए बैठे होते थे, वो कहते थे महाराज जी जब समाधि से जागृत होते थे तो आंखों में उनकी लाली होती थी, ऐसा लगता था कि गहरे नशे में से वो बाहर आए हैं। उनकी शक्ल हम इसी तरह से ध्यान कर सकते हैं। तो 5-10 मिनट कई बार लग जाते थे तब महाराज जी बोलने लायक होते थे, कहते थे प्रेमी कोई विचार करो, और कहीं प्रेमी ने 5-7 मिनट मौन धारण किया विचार नहीं किया तो फिर समाधि कर लिया। तो वो कर्तापन की रहित हालत गुरु, जहां कोई संसार से अटैचमेंट नहीं है, जहां कोई शिष्यों से अटैचमेंट नहीं है, जहां अपनी देह से कोई अटैचमेंट नहीं है, अंदर की जितनी चीजें सूक्ष्म शरीर के रूप में वर्णन की गई वहां उससे भी कोई अटैचमेंट नहीं, तो उस स्थिति का मालिक सत्य महामंत्र प्रकट हो गया, वाणी भी प्रकट होने लगी। उसके बाद भी जलमादा में जाकर महाजी कह रहे हैं कि 14 वर्ष से जिस वस्तु की तलाश थी वो आज इनको प्राप्त हुई। ये वही हालत है जो अगत से उतर इनको प्राप्त। ऐसा गुरु, अब बताइए संसार में एक बार में एक दो ही देखने को मिलेंगे, एक बार तो एक प्रेमी से महाराज ने ये भी कहा था, महर्षि रमण का जब ध्यान हुआ, शरीर शांत हुआ, तो महाराज कहता इस वक्त ये अकेले ही, पूरे संसार में उस समय अकेले ही सब कुछ महाराज, ये कितनी रेयर थी। और इस डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे ये रेयर ही थी। इसीलिए अभी हम कर्तापन के चक्कर में ना पड़े। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने इसको बता दिया, अभी तो इच्छा होती है तो जाने, लेकिन ये बड़ी गहरी बात। इसीलिए आज जहां हम खड़े हुए गुरु जैसा बयान कर रहा है, तो संता विलास को गहराई से पढ़ें जरूर, अपने बंधन को समझें। ये सारा साइंस सारा विज्ञान समझने से ये फायदा जरूर होता है कि अपने बंधन की गहराई को समझें कि बंधन मेरा कितना सूक्ष्म है। अभी तो ये मोटे मोटे बंधन ही छोड़ पा रहा हूं, जरा सा मेरा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है सिमरन छोड़ देता हूं, जरा मेरा घर का काम सफर करता है सिमरन छोड़ देता हूं, सत्संग छोड़ देता हूं, स्वाध्याय छोड़ देता हूं। अरे जो तेरे जिससे जीवन तेरा बनने वाला है, जो तुझको मौत के मुंह से निकालने वाली है, उसी को छोड़ देता तू। तेरे परिवार के कर्तव्य, तेरे सामाजिक कर्तव्य, तेरे शारीरिक कर्तव्य, अरे ये तो सब तुझको मौत की तरफ ले आ रहे हैं। तुझको एक ही चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तू देह है, तू देह है, तू देह है, यही तो करवा रहे, तुझसे क्या करवा रहे। तेरा देह मत और दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा। और जो लोग विचारवान नहीं है वो सत्संग सुन के भी देह मत में और गहरे होते जा रहे हैं, दान पुण्य करके देह मत में और गहरे डूबते चले आ रहे हैं। ये हो रहा है दान पुण्य का। विचारहीन यदि हैं आप, शास्त्र को विचार करने की जरूरत नहीं समझते या उसको समझ नहीं पाते, तो आप देह मत में ही रहोगे, कहां जाओगे, इस ऊपर उठ नहीं सकते। इस कारण संगतों का पतन होता है, इस कारण महाजी के शिष्यों का भी महाजी के सामने ही पतन हुआ। देखो ना, दो देवियों को महाजी ने दीक्षा दी थी और प्रेमियों की गारंटी लेने पर, दो पंजाब की देवियों को महाजी ने, महाजी जानते थे ये देवियों का मन चिंतन होता है, तो वही हुआ। महाजी बात सच निकली, महाजी के रहते रहते उन देवियों ने आगे नाम देना शुरू कर दिया। तो महंगा प्रेमियों से जिन्होंने गारंटी दी थी बुलाया, प्रेमी तुमको पहले ही मना किया, फिर भी तुमने इनको मजबूर किया, ये बड़ी अच्छी देवियां हैं, बड़ी सुशील हैं, बड़ी वो हैं, क्योंकि गुरु जानता है। क्योंकि इस अध्यात्म के मर्म को ये क्या समझेंगे लोग, ये क्या सोचेंगे कि ये कितना बड़ा हम ये पाप कर्म कर रहे हैं जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको समझ आई कभी? तो ना ये जिंदगी अगर नाम को समझ पाएंगे, जब भी गुरु को ही नहीं समझ पाए तो नाम को क्या समझेंगे। तो इसीलिए ये सारा विज्ञान, चाहे वो नाम का विज्ञान हो, चाहे वो दीक्षा का विज्ञान हो, चाहे वो गुरु का विज्ञान हो, क्या वो कर्तापन का विज्ञान है, बड़े गहरे विज्ञान है, पूरा जन्म आपका लग जाएगा तब भी ये बातें समझने पूरी तरह आने वाली नहीं है आपकी, वो भी तब जबकि आप गहराई से समझने की कोशिश करोगे तब। तो बंधन हमारा बड़ा गहरा है, हम तो अभी इंद्रियों के भोगों में खड़े हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं बना रहे हैं। तो अभी तो मैं अंदर जाने की तैयारी नहीं कर रही हूं, मैं बाहर रेस लगाने की तैयारी कर रही हूं। इसीलिए जीव के हर कर्म को पाप कर्म कहा जाता है। जो अहंकार धारण करके मैं करता हूं ये कर्म करता है, ये सारा का सारा पाप है, क्योंकि जीव को, जीव के बंधन को ये बाहर। तो आप जब ये वासना विवेक चक्र पढ़ोगे तो वासना छेदन विवेक में, इसलिए महाराज ने ये सेंटेंस लिखा, वहां पर एक एक पैराग्राफ लिखा कि बड़े बड़े योग दान धारण करने वाले, योग तो जानते हैं, सिमरण योग है, इनकी वासना पहले से भी गहरी हो जाती है। करो सिमरण आप, लेकिन विवेक नहीं आपके अंदर, तो आपको सिमरण ही अहंकार बढ़ा देगा, मैं बड़ा सिमरण करने वाला। जैसे कई बार आप देखो कुछ प्रेमी बड़ा सीधा तांगे बैठते हैं सत्संग में, जैसे बड़ा ये सतोगुणी आदमी है और बड़ा श्रेष्ठ आदमी, उनको देह को देख के पता चलता है ये देह का अहंकार आदमी, अपनी करनी का अहंकार बाहर आया फिर। तो गुरु ने तो लिख दिया, जो महाराज जी ने संता छेदन, ये वासना छेदन विवेक में इस वचन में लिखा है, वो हर प्रेमी को पढ़ने की चीज है। इसको पढ़ने के बाद हर चीज का अहंकार खत्म हो जाएगा, मैं तो यही तो कर रहा हूं, इसीलिए मैं संगत में भी दुश्मन तैयार कर लेता हूं, संगत में भी ऐसे लोग तैयार कर लेता हूं जिनसे मैं नफरत करता हूं, प्रेमी तो बन ही नहीं पाता मैं नफरत करना शुरू कर देता। इसे देखा हुआ संगतों में लोगों को बोलने का शौक लग जाता है, बोलने के शौकीन लोग होते ना, ये देह के अहंकार ले जाते, दिखाना है मैंने मैं कितना अच्छा बोलता हूं, देह को तो दिखाएगा किसको दिखाएगा, वो अपने जीव भाव में ही स्थित नहीं है, ईश्वर भाव में तो बाद में स्थित होगा, वो जीव भाव में भी स्थित नहीं, वो देह भाव में स्थित, यहां खड़ा हुआ है वो क्या सिखाएगा किसी। इसीलिए शास्त्रों की बातें पढ़ने का शौक हमारे अंदर होना ही चाहिए, भले ही वो समझ में ना आए लेकिन कुछ तो समझ में आएगा, जहां मेरी बुद्धि खड़ी है, जहां मेरा जीवन खड़ा है, वहां की बात तो समझ में आएगी। तो उसमें से मैं वही तलाश कर लूं कि आज की स्थिति में महाजी यदि मेरे सामने खड़े होते तो मुझसे क्या करने को कहते। तो महाजी का शास्त्र यदि संतरास पढ़ोगे इस दृष्टिकोण से तो आपको अपने मत की बात वहां से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल पता चलेगी, और आप कहोगे इसको करना असंभव नहीं है, ये मेरी सामर्थ्य के अंतर्गत है, मैं कर सकता हूं। अब आप अपना एनालिसिस करो कि मैं संसारियों की नकल करके कर रहा हूं या गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कर रहा हूं, सीधी सी तुलना कर लोगे। यदि आपका निर्णय कहता है कि नहीं, मैं आज तक जो कुछ कर रहा हूं, आगे भी जो प्लानिंग है, वो संसारियों की नकल करके कर रहा हूं, गुरु कुछ मार्गदर्शन दूसरा कर रहा है, वो कुछ और चाहता है, बदलो भाई, अपने लिए ही तो जी रहा हूं मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बहुत पढ़ लिख जाएं, बड़ा रोजगार करें, बहुत बड़ी सर्विस करें, खुशी किसको होगी, मुझे ही तो होगी ना, वो मेरा सुख है, वो मेरी खुशी है, तो इसलिए वो परिवार मेरा है, इसीलिए परिवार को आपकी देह का ही अंग कहा जाता है। संतान क्या है, पिता की देह का अंग है, तू समझता मैं इनके लिए कर रहा हूं, कर्तव्य कहता है, ये कर्तव्य नहीं कर, इसका मतलब ये नहीं है तेरी जिम्मेदारी नहीं हो, बच्चों का पालन करना, बच्चों को पालन करना जिम्मेदारी है, मोह बढ़ाना जिम्मेदारी नहीं है तेरी, तू मोह के अधीन होकर जिम्मेदारी का पालन कर रहा है, इसलिए कुछ का कुछ सोचता रहता है, कुछ का कुछ करता है। तो इसीलिए सुनने की आवश्यकता सत्संग कम होती है, मनन करने की आवश्यकता ज्यादा है। हम सुनते ज्यादा हैं, मनन लगभग ना के बराबर करते हैं, सोचने की आदत ही नहीं डाली है। इसीलिए पांच नियम में महाराज जी ने जो बात इंप्लीमेंट करने के लिए लिख दी, उसके लिए पांच चैप्टर भी संतादास में लिख दिए, स्टार्ट तो यहीं से होगा। लेकिन एक वासना विवेकी चित्र ध्यान से पढ़कर देखें, योग मार्ग बोध ही ध्यान से पढ़कर देखें, पता लगेगा कि आगे मार्ग कितना लंबा है, ये कई जन्म का मार्ग है। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है कि यदि आपने गुरु के प्रति दिल से समर्पण किया है कि गुरुदेव मुझे बड़ी लेट होश आई है, क्योंकि अब होश आई है, अब मैं नालायकी नहीं करूंगा, ईमानदारी से जैसा आप कह रहे हो वैसा मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, तो समझ लो गुरु ने आपका हाथ पकड़ा, फिर भला नहीं कोई बात नहीं, लेकिन चलाखिया करते रहोगे तब बात नहीं बनी। तो आपने इसी संत अरदास में तलाश करना है कि क्या मैं कर सकता हूं, क्या गुरु करने को कह रहा है और क्या मैं कर रहा हूं, उसके प्रति यदि मैं ईमानदार हो जाऊं तो एक दिन मेरे जीवन में वो जरूर आएगा, जब इस कर्तापन से भी मुक्त हो जाऊंगा और ब्रह्म स्थिति को समता स्थिति को प्राप्त। ओम जय सत्य।